य राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम चरणान्ति। आप लोगों ने सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात उनके सतीर्थ मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार नमन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु परम वाग्मी उदार श्री भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज के चरण कमलों में मैं अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पूज्यपाद गिरि महाराज जी की महिमा का वर्णन करना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में रूप गोस्वामी की परंपरा में तत्पश्चात षड गोस्वामी की परंपरा में भक्ति भागीरथ सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में और श्रील प्रभुपाद की परंपरा में एक बड़े ही उज्जस्वी और तेजस्वी वैष्णव आचार्य थे। सबके प्रति बड़ा उनका स्नेह मृदुभाषी थे। और विषय में तो हमारा अपना सौभाग्य मैं नहीं कह सकता, भक्ति का भाव ही नहीं, किंतु यही सौभाग्य रहा कि श्रील प्रभुपाद के अंतरंग जो उनके शिष्य वर्ग थे उन लोगों का दर्शन का उनके हरिकथा श्रवण का सुयोग हम लोगों को मिला। पूज्यपाद भारती महाराज तीर्थ महाराज इत्यादि सबको करी करी हम लोग 50-52 वर्ष पहले अपने गुरु जी का चरणाश्रय किया, इसलिए ये हम लोगों का सौभाग्य रहा उनके दर्शन मिले और उनके उपदेशों को श्रवण करने का भी सुयोग मिला। आज यदि वो लोग नहीं होते सुदूर पंजाब में आसाम में बंगाल में भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों में केवल यही नहीं इन लोगों ने पाश्चात्य देशों में अमेरिका इंग्लैंड इत्यादि जो समृद्ध देश हैं लोगों में ऐसा प्रचार किया है उसकी भित्ति स्थापन की जहां हम लोग सहज रूप में प्रचार कर रहे हैं। ये सब इन लोगों का ही इन लोगों की ही महिमा है। आज मैं इन्हीं लोगों के उपदेशों से शिक्षाओं से मैं दो एक बातें आपके सम्मुख निवेदन करूंगा। पहली बात तो ये आज श्रावण का महीना है, होनी तो चाहिए थी रिमझिम वर्षा, श्रावण की फुहार होने वाली थी, किंतु अद्भुत गर्मी पड़ रही, कुछ विपरीत देख रहे हैं। तो भी वृंदावन में ब्रज में उमंग की कमी नहीं, सभी लड़कियां अपने पति के घर से पिहर में आई होंगी, पिहर वाले माता पिता भाई उनको बुलाए होंगे, घर घर में झूले लग रहे होंगे। आप देख ही रहे होंगे कि वृंदावन में ऐसा कोई घर नहीं जो मंदिर नहीं, यहाँ पर कि झूले हुए नहीं पड़ रहे हैं। राधा जी कीर्तन तो वही सब जगह, राधे झूला न पधारो आई घिरी आई बदरा, घिरी आई बदरा राधो झूलन पर, ऐसे कितने सब जगह चल रहे हैं। राधा मैं ब्रज हो रहा है, चारों तरफ में कहीं रास हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भागवत का पाठ हो रहा है, भी वातावरण विश्व में नहीं ब्रज में ही है। ऐसे मालूम पड़ता है कि यहां लताएं, यहां की पताएं, कण कण में राधा जी विराजमान है। कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी, यहां तक कि सर्वम खलेदम ब्रह्म कहने वाले लोग, अम ब्रह्मास्मि कहने वाले लोग भी इस भूमि में आकर के ब्रह्म इत्यादि भूल जाते हैं, राधा जी के धूलि में अभिषिक्त हो जाते हैं, उनको भी इसकी याद आती है, स्मरण होता है। मूल यह है कि यहीं पर हमारे स्वर्ग गोस्वामी ने इस ब्रज को विशेष करके प्रकाश किया, चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा से भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी पहले आए, पीछे से स्वर्ग गोस्वामी लोग आए और उन्होंने ब्रज का प्रकाश किया। नहीं तो ये ब्रज जैसा नहीं था, यहाँ लुप्त हो चुका था, बंसी भट्ट नहीं था, कालियादा नहीं था, कुछ लोग काम्यवन को ही ब्रज वृंदावन मानने लगे, राधा कुंड का भी श्याम कुंड का प्रकाश नहीं था। ये हमारे समस्त संप्रदायों के लिए, हमारे स्वर्ग गोस्वामियों की और गोस्वामियों की देन है जो आज इस वातावरण में वृंदावन है। इन्होंने आकर के नवीन रूप में इस ब्रज को ढाला जो कि लुप्त हो चुका था। विशेष करके अभी हाल ही में कल ही परसों रूप गोस्वामी की विरह तिथि मनाई गई। सचमुच में कहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी प्रकाश किया श्रील रूप गोस्वामी ने। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो प्रेम की कुठरी की कपाट कौन खोलता, जगत इसे वंचित रह जाता। कृष्ण तत्व क्या है, लोग समझते जो द्वारकाधीश नारायण ही परम तत्व हैं, यही लोग समझते। श्री चेतन महार और उनके परिकर विशेष करके रूप गोस्वामी जी ने प्रेम तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, गोपी प्रेम क्या है, इस सब का उद्घाटन किया। ये लोग नहीं आते तो भक्ति तो थी हमारे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, वल्लभाचार्य इत्यादि सब लोग थे, बड़े बड़े आचार्य आए, भक्ति का प्रचार किया। इसके पहले भी नारद गोस्वामी इत्यादि ने भक्ति का प्रचार किया, प्रहलाद महाराज ने भी प्रचार किया, वो भक्ति के रूप में थी, किंतु भक्ति रस नहीं था। भक्ति रस में, भक्ति को भक्ति रस में प्रतिष्ठित किया चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से श्रील रूप गोस्वामी ने। इसलिए सारा संप्रदाय विश्व श्रील रूप गोस्वामी का ऋणी है और रहेगा। मैं उनके दो एक उपदेशों में से थोड़ा सा मैं वर्णन कर, महाराज जी अगाध विद्वान हैं, हमारे संप्रदाय के सब सिद्धांत को जानने वाले हैं। आप लोग हमारे भक्ति क्या तीर्थ, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी के उपदेश के लिए आप लोग ललच रहे होंगे, उनके सुनने के लिए आप लोग आए होंगे। आज वो पश्चात देशों में प्रचार कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में लौटेंगे, वहाँ भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनके बदले में हमारे भारती महाराज जी हैं, ये महाराज जी लोग हैं, आप लोगों को वैसे ही सब चीजों को परिवेशन करेंगे। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं थोड़े से दो चार अक्षरों को आपके सामने केवल मैं प्रकट करूंगा। श्री रूप गोस्वामी ने एक भक्ति की, इधर से आएगा, अच्छा, पहले पंचरात्र में भक्ति की परिभाषा दी गई थी, पर अनुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परम अनुरक्ति हो। किंतु यह ईश्वर कौन है ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। दूसरे दूसरे ग्रंथों में भी भक्ति की परिभाषाएं दी गई, ऐसा भी कहा गया लौकिकी वैदिकी वापी जाक्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकल्लेव सा कार्या भक्ति निच्छता। लौकिकी वैदिकी जितनी भी क्रियाएं हैं भगवान के प्रति के उद्देश्य से यदि की जाएं तो वो भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत में भी दिया गया लक्षणम भक्ति योगस्य उदाहरितम अहेतुक्य अब्दवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम में अव्यवहिता विघ्न बाधा रहित नैरंतर्यमयी तैलधारावत विच्छिन्न गति से चित्त की वृत्तियां जिनके चरणों में भगवान के पुरुषोत्तम के चरणों में लग जाती है उसको भक्ति कहते हैं। सारी परिभाषाएं थी किंतु श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु की प्रेरणा से भक्ति की ऐसी सुंदर एक व्यवस्था दी, परिभाषा दी। केवल भक्ति की परिभाषा नहीं बल्कि भक्ति की परिभाषा दी, उत्तमा भक्ति की परिभाषा दी, मिश्रा भक्ति की परिभाषा दी, साधक किसको कहते हैं इसकी परिभाषा दी। यदि उस साधक का विश्लेषण किया जाए भक्ति रूप गोस्वामी के विचार से तो हम लोग अभी भक्ति के साधक में पढ़ेंगे कि नहीं ये भी देखना होगा। साधन की परिभाषा दी कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा भावास साधन विदा, भाव भक्ति की परिभाषा दी, प्रेम भक्ति की परिभाषा दी। ऊपर में इसके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव की परिभाषाएं दी जो आज तक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। और भक्ति रसामी सिंधु के बाद में परिशिष्ट में उज्जवल नीलमणि को उन्होंने प्रकाश किया जो विश्व में ऐसे सब चीजें नहीं हैं, उसमें उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी। अन्य अभिलाषिता सुनिन ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति कृष्णानुशीलनम भक्ति, कृष्ण की अनुशीलन करना ही भक्ति है। क्या अनुशीलन? मन से वचन से काय की वाचिकी और मानसिक जितनी हमारी चेष्टाएं हैं वो कृष्ण प्रीति के लिए हों, वो भी कैसे? चेष्टाएं भी दो प्रकार की होती है, एक प्रवृत्ति मूलक और एक निवृत्ति मूलक। हम तन मन वचन की जितनी भी चेष्टाएं करें, जितने भी जो कुछ कर रहे हैं वो चेष्टाएं हो प्रवृत्ति मूलक, अतः तो कृष्ण भक्ति के साधन के लिए हो, और दूसरा निवृत्ति मूलक। भक्ति के विपरीत जितनी भी चीजें हैं अन्न अभिलाष ज्ञान इत्यादि जितना भी कुछ है उन सबको त्याग करना, विशेष करके भक्ति के पथ में जो जो चीजें बाधक हैं जो हमें नहीं करना चाहिए उन सबको त्याग करें, ये निवृत्ति मूलक। और इसके अतिरिक्त एक और चीज है जहां मन वाणी और शरीर नहीं पहुंच सकता
वो जो भाव की जो चेष्टाएं हैं, विशेष करके नर्म निर्मल मन, कृष्ण भक्ति विभावित मन है, उस मन की जो चेष्टाएं हैं जिसको भाव कहते हैं, इनके द्वारा निरंतर कृष्ण की सेवा के लिए हो तो इसको भक्ति कहेंगे। किंतु दो चीजें हैं, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। किसी प्रकार की अभिलाषा न हो संसारी, अभिलाषा हो कृष्ण की भक्ति बढ़े, कृष्ण में प्रेम बढ़े, बस इसके लिए चेष्टा हो, इसके अतिरिक्त कोई भी चेष्टा न हो। किंतु इसमें एक लगा दिया, अन्नाभिलाष न कह करके अन्नाभिलाषिता कहा, स्वाभाविक रूप में अपने ज्ञान में स्वाभाविक रूप में जिस स्थिति में हो उस स्थिति में कोई अभिलाषा मत करो, स्वभाव में नहीं होना चाहिए। किंतु स्वभाव के उलटने पर, स्वभाव कोई बदल जाता है किसी कारण से, कोई आपको वध करने के लिए आ रहा हो, कोई आपको जान से मारने आया हो, और उस समय में हठात आपका स्वभाव बदल गया, हे कृष्ण रक्षा करो, तो ये अन्नाभिलाषिता नहीं है, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि स्वभाव विकृत हो चुका है। इसलिए यदि कोई अस्वाभाविक स्थिति में कोई प्रार्थना करता है तो वो क्षम्य है, किंतु स्वाभाविक स्थिति में हम हैं और उस समय कोई प्रकार की लालसा हो रही है, आप लोग शांत रहिए, एक चुपचाप, एकदम चुपचाप रहिए दो मिनट। कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, जैसे अभी हम लोग हैं, कोई कष्ट नहीं, संकट नहीं, हे कृष्ण हमारी नौकरी लगा दीजिए, हमारे ऊपर में ये संकट पड़ा हुआ है, तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। किंतु कोई मृत्यु के समय में हठात कोई संकट में गंभीर आ गया और उस समय में चित्त परिवर्तन क्षुब्ध है, और उस समय हठात कह दिया, जैसे द्रौपदी जी ने कह दिया, हमारी लज्जा रखो प्रभु, अब तो जीवन हारी, संकट ग्रस्त अवस्था में चित्त के विक्षुब्ध हो जाने पर यदि कोई लालसा हठात कोई देखी जाए कामना, तो वो क्षम्य है भक्ति के लिए, वो अन्नाभिलाषिता शून्य ही है। इसलिए स्वाभाविक स्थिति में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, भक्ति ज्ञान और कर्म के द्वारा ढकी न हो। क्या तात्पर्य, हम जब तक हमारा शरीर है तब तक हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं, किंतु सुख के लिए जो कर्म है वो मत करो, ऐसे कर्म करो जिससे कि भक्ति की उद्देश्य करती है यज्ञार्थात कर्मणो, ऐसा करो, वैष्णव की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए ऐसे करो। ऐसे भी कर्म जो हैं उसे भक्ति आवृत हो जाए, ऐसा न हो। जैसे एक उदाहरण के देकर के समझिए, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा, और जन्माष्टमी जोर तोड़ से मनाएंगे, इसके लिए 10 लाख रुपया हमने विधान किया, इसलिए 10 महीने 15 महीने पहले से ही जन्माष्टमी के आयोजन के लिए भीख मांगना आरंभ कर दिया, भिक्षा, तरह तरह के चीजें करने लगे, 2 लाख इलेक्ट्रिसिटी में लगाया, ये इसके लिए खूब चारों तरफ में प्रकाश हो, और दूसरे दूसरे कार्यों में ऐसा लगाया, और सब लोग आए, लाखों लाखों लोग देख करके, वाह बहुत अच्छी तरह से मन गई, तुमने क्या किया, भक्ति वृद्धि हो इसके लिए क्या किया। इसलिए ऐसे कर्मों के द्वारा, बहु आरंभ के द्वारा भक्ति ढक जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, ऐसे कर्म मत करो जिसमें भगवान को भूल जाओ, वैष्णव की सेवा भूल जाओ, और सब कुछ भूल करके बस इसी में सारा जीवन लगे रहो, बहु आरंभ मत करो। हमारे गुरु वर्गों के द्वारा जो सहज रूप में 1 सेकंड में जो बातें हो जाती थी, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं, बड़ी बड़ी मंदिर इत्यादि करते थे, हम लोग वैसा नहीं कर सकते। उनका अनुकरण करके हमको नहीं चलना है, हमारी भक्ति ठीक रहे। इसलिए ऐसे कर्म इत्यादि भी भक्ति के नाम पर न हो जिससे हमारी भक्ति अनुशीलन में बाधा पहुंचे, नहीं तो बहु आरंभ हो जाएगा। इसलिए कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति न ढके। कर्म और ज्ञान करने के लिए हम बाध्य हैं, किंतु ऐसा कर्म न हो और ज्ञान न हो, तत्व ज्ञान की जरूरत है। कृष्ण क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, समस्त अवतारों के अवतारी हैं। एक कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान सा। भक्ति की प्रारंभिक स्थिति में इसकी आवश्यकता है, किंतु यही भक्ति सर्वस्व नहीं है जो कृष्ण ही भगवान है। ब्रज भक्ति के लिए यह बाधक है, इसको भी समझना होगा। उस समय में बल्कि अब भूल जाना होगा आप साधन करते करते जो कृष्ण भगवान सर्वैश्वर्य सर्वैश्वर्य पूर्ण है, इसको भी भूल जाना होगा। ये ऐश्वर्यमयी भक्ति है, ऐश्वर्य के द्वारा प्रेम ढक जाता है। और जो ब्रज का प्रेम होता है, जो कृष्ण मेरे बेटे हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम है, ये भक्ति नहीं होती। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहि मोर प्रीति, इस चीज को भी याद रखना चाहिए। यद्यपि इसकी जरूरत है तत्व इत्यादि ज्ञान की, किंतु विशेष उत्तम अवस्था में इसको भी भूल जाना पड़ेगा। यशोदा मैया को कृष्ण ने अपने मुख में विराट रूप दिखलाया, उनको ये नहीं हुआ जैसे ये कृष्ण भगवान स्वयं हैं। उन्होंने कहा इसको पिशाची लग गई, या किसी ने टोना कर दिया, जादू कर दिया, क्या हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, काली गाय के गोबर से और मूत्र से मिला करके उनको स्नान कराया गया, कृष्ण का अभिषेक करा गया, जिसके नाम से जगत पवित्र हो जाता है। उनको भगवत्ता का भाव नहीं आया। इसलिए बतला रहे हैं कि ज्ञान की पहले कुछ आवश्यकता है तत्व ज्ञान, किंतु एक और ज्ञान है जो भक्ति के लिए परम बाधक है, वो क्या, जिसको निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। यदि सर्वमखलिदम ब्रह्म बात ठीक है, यदि यह सभी कुछ ब्रह्म है, तो यह जगत मिथ्या कैसे हुआ। इसलिए ऐसे जो ज्ञान है, सर्वम खल सभी तो ब्रह्म है, अब्रह्म परम सत्य है। इसलिए ऐसे जो ज्ञान है, जो ब्रह्म कृष्ण का रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, सभी ब्रह्म है और जगत झूठा है, यह जो ज्ञान है भक्ति के लिए परम बाधक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग नैर्गुण्य परिनिश्चित हो, अभी नैर्गुण्य ब्रह्म में परिनिश्चित होने पर भी व्यास जी की कृपा से केवल एक श्लोक के द्वारा भक्ति में आकर्षित होकर के चले आए। वह श्लोक कौन था, बरहा पीड़म नटवर बहु। श्रीमद भागवत में कृष्ण के सौंदर्य की ये पराकाष्ठा है। कृष्ण का गुण क्या है, ओहो बकीयम सनकालकूटम, उनको सुनकर के निर्गुण में से निकल पड़े। सनक सनंदन सनातन निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, किंतु ब्रह्मा जी की कृपा से ये लोग भी उस निर्गुण ब्रह्म से निकल करके भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी के मकरंद से आकर्षित होकर के कहां चले आए, परम भक्त हो गए। जो सनक सनातन वर्णित, राधा जी का वर्णन किया है, अष्टकाली लीला का वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत को प्रवचन उन्होंने किया पहले नारद जी के सामने, रसिक वैष्णव बन गए। निगम कल्प तरुर गलित फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका, ये रसिक एवं भाव भक्त बन गए। इसलिए निर्विशेष जो ब्रह्म के जब भगवान का रूप नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, निराकार निर्गुण इत्यादि है, निरंजन अव्यक्त है, ऐसा जो ज्ञान है भक्ति तत्व को ढकने वाला होता है। और ऐसा कर्म जो निरीश्वर कर्म है, अपने सुख के लिए होते हैं, जिस कर्म में भगवान का कोई संबंध नहीं है, ये कर्म भगवान के भक्ति को ढक देते हैं, इसे दूर रहे। तत्व का अनुशीलन जो होगा वो उत्तमा भक्ति होगा, अन्यथा नहीं। इसमें भी बहुत से विचार हैं, मैं संक्षेप में कुछ दिग्दर्शन करा। श्लोक की कसौटी पर हम आप कसें। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र आता है। नारद जी से भेंट हुई, संकल्प किया था कि मैं श्रीहरि की आराधना करूंगा। किस लिए? किस लिए आराधना की? अपने पिता का राज्य पाने के लिए। हमारे पिताजी असंतुष्ट हैं, हमको राज्य नहीं दे रहे, तो ठीक है, हरि की तपस्या करूंगा, आराधना के द्वारा पृथ्वी का राज्य, केवल पिता का नहीं पृथ्वी का राज्य का भोग करूंगा, ये दिखला दूंगा। इसलिए नारद के समझाने पर भी नहीं माने। उन्होंने कहा जब मर जाऊंगा तब मर जाऊंगा, किंतु भगवान की आराधना करके हमको ये बात करनी है। अच्छा ठीक है, उन्होंने मंत्र दे दिया भगवान का, और उन्होंने मंत्र के अनुसार में 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की। हुआ क्या, उन्होंने निष्कंटक पृथ्वी का राज्य उनको दे दिया। कितने दिन के लिए? 36,000 वर्ष के बाद उनकी कामना पूर्ण हो गई। किंतु जब भगवान चले गए दर्शन देकर के, तो हाय हाय करने लगे। मैं तो कांच खोज रहा था, कांच बने क्या, ये पृथ्वी का सुख और राज्य, और भगवान की कृपा से उनके दर्शन मिल गए, और मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, क्यों मैंने अपना समय 36,000 बर्बाद नहीं करूंगा। रोने लगे, किंतु उनको 36,000 वर्षों का भोग करना पड़ा। किंतु भक्ति की ऐसी प्रभाव, ऐसा प्रभाव है, नहीं चाहने पर भी उनको ध्रुवलोक, ध्रुवलोक माने क्या, भगवान का इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में एक लोक है जो स्थिर है, जिसको सूर्य इत्यादि सभी परिक्रमा करते हैं, वह ध्रुवलोक दे दिया। भक्ति नहीं दी, कोई सेवा नहीं दी उनको, इसलिए उनको वंचित रहना पड़ा। इसलिए ये भक्ति शुद्ध नहीं है। भक्ति तो कुछ है, मिश्रा है, सकाम भक्ति। दूसरी बात, प्रहलाद महाराज की भक्ति हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज की भक्ति, जरा सावधानी होकर के सुनना, प्रहलाद महाराज की भक्ति है। नृसिंह जी प्रकट हुए, कहा जो तुमने हमारे लिए बड़ा कष्ट किया, वर मांगो। तो उन्होंने क्या कहा, मैं बनिया नहीं हूं, हमारे अंदर में यदि कुछ मांगने की इच्छा है तो आप दूर कर दीजिए, मैं कुछ नहीं चाहता, हमारा दर्शन सामोग है, कुछ तो जरूर हमको देना चाहिए, आप कुछ भी मांगो, पर हमारे पिताजी का को भक्ति दे दीजिए, उनका कल्याण हो। अरे ये तो हो गया, ये मांगने की जरूरत नहीं, कुछ और मांगो। कहिए जब इतना ही प्रसन्न है तो ये मैं चाहता हूं कि पृथ्वी के जितने भी जीव हैं संसार के, उनके क्लेश मैं भोगूं, और हमारे जो कुछ सुकृति और पुण्य है या भक्ति है, तो वो इसका फल और सब लोग भोगे। मैं कोटि कोटि जन्मों के लिए तैयार हूं उनके दुखों को भोगने के लिए, तो सबको भक्ति दीजिए। प्रभु बोले, मैं हार गया, तू जीत गया, इतना तो मैं नहीं कर सकता, किंतु हमारी इस गाथा को जो तुमने हमारा भजन किया है और मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, इस गाथा को जो बोलेंगे सुनेंगे उन सबको भक्ति होगी। यहां पर प्रहलाद महाराज जी की भक्ति तो है, भक्त तो हैं, किंतु भगवान की कौन सी सेवा की, किस भगवान की सेवा की? इसमें कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा कृष्ण की सेवा की। महाभागवत हैं, सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करते हैं, ये बात ठीक है, अन्नाभिलाषिता नहीं है, ज्ञान कर्म शून्य ये भी नहीं है, बात तो ठीक है, किंतु कृष्ण का अनुशीलन, कृष्ण की प्रेममयी सेवा क्या किया, कृष्ण से संबंध उनके क्या है, है? नृसिंह जी उनके पिता हैं, न मैया है, न बाप है, न सखा है, न क्या है, कोई संबंध नहीं। इसलिए ये उत्तमा भक्ति होने पर भी संबंध ज्ञान रहित, प्रेम परिपाटी की सेवा से रहित है, इसमें भक्ति नहीं है। वैसी चैतन्य महाप्रभु जी का अभिष्ट नहीं है। अब इसको पार करके और चलिए, जब इसे हम और आगे चलते हैं, अन्याभिलाष नहीं है, ज्ञान कर्म नहीं है, बात तो ठीक है, ब्रह्म ज्ञान भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं है। हनुमान जी की सेवा देखो, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, एक दिन सीता मैया अयोध्या में अपने श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करने के बाद में सिंदूर लगा रही थी, सुहाग इसको कहते हैं। हनुमान जी खोजते खोजते, अरे मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई, खोजते खोजते श्रृंगार भवन में पहुंचे। देखा जी वो श्रृंगार कर रही, अरे तू अभी चलाया, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, मैं तुम्हें खोज रहा था मैया, तू क्या कर रही है, ये लाल क्या लगा रही है। तो बड़ी दयालु सीता मैया हैं, उन्होंने कहा मैं ये सुहाग धारण करती हूँ। इसका मतलब क्या, तुम्हारे जो प्रभु हैं वो चिर जीवित रहेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं कभी भी विधवा नहीं होंगी।